ज्ञानतिवरमुन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकं चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सम्मेलन का तो आज की चर्चा भगवद गीता के श्लोक से करते हैं। महात्मानस्तुमां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः महात्मा जो मेरे होते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महात्मा मतलब जो आत्मा बहुत बड़ा है, बड़ा का मतलब जो भगवान के बिल्कुल निकट जाके पहुंच गया है, जो भगवान के साथ बैठता है, जो भगवान उसको कहते हैं उपगीयमानाय, वो ऊपर उनके संग में बैठकर भगवान का भजन गाता है, भगवान की कीर्ति गाता है। कहाँ बैठकर? भगवान की गोद में बैठकर, उपगीयमानाय। वो कैसा महात्मा होता है? निवर्ततृषयी उपगीयमानाय। वो संसार की तराशनाओं से मुक्त हो गया है, संसार की वासनाओं से मुक्त हो गया है, जो संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो चुका है, ऐसा महात्मा। इस महात्मा के लिए कौन कह रहा है? ऐसे महात्मा का वर्णन कर रहा है इस पूरे विश्व का एक ही राजा, छत्रपति एक राजा, महाराज परीक्षित के मुख से निकले हुए ये शब्द है, निवर्ततृषयी उपगीयमानाय भवौषधि मनोभिराम। संसार सागर ऐसा भव है, भव का मतलब जिसमें जन्म और मृत्यु होती है, इस जन्म मृत्यु के सागर के अंदर इस दुख से दूर होने की अगर कोई औषधि है, कोई दवाई है, तो क्या है? भव औषधि। दवाई क्या है? भव औषधि मनोभिरामा। कैसी औषधि है ये? ये औषधि इतनी मधुर है, केवल कानों से इस भगवान के कथा सुनने से भव के रोग का निवारण हो जाता है। लेकिन सुनने किससे चाहिए? कौन से डॉक्टर से ये दवाई लेना चाहिए? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि दवाई किससे ली जाए। दिल की ऑपरेशन कराने के लिए हर एक दुकानदार के पास नहीं जाएंगे। जितनी क्लिनिक यहाँ खुली हुई है पूरे रोहतक में, आपको दिल का ऑपरेशन कराना होगा तो वहाँ नहीं जाएंगे। खांसी की दवाई तो लेने जाएंगे, लेकिन दिल का ऑपरेशन कराना है, उसके अंदर उसको सफाई करनी है, तब तो ऐसा डॉक्टर चाहिए जिसकी औषधि और जिसका निस्तर जब चाकू चलाएगा तो दिल की नलियां खोल देगा, दिल को नहीं काटेगा। तो ऐसा डॉक्टर कौन है जो हरि कथा का दवाई जब देता है तो वो दवाई हमारे दिल के अंदर सफाई करके भगवान को प्रकट करती है। उसका गुण क्या है? निवर्त तृषयी, तृष्णाओं से जो निवर्त है। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी आप ऐसे महात्मा हैं जो तृष्णाओं से निवृत्त है, आपको कोई संसार की वासना और तृष्णा नहीं है। ऐसा महात्मा था सुखदेव। जब जन्म के पहले तो जन्म लेने को तैयार नहीं था संसार में। उसका पिता व्यासदेव कहता है आ जाओ बेटा, बोला नहीं, माया संसार में इतनी प्रबल है कि इससे बचना बहुत मुश्किल है। दैवीहेश गुणमयी मम माया दुर्तया। अरे मेरी माया, भगवान कहते हैं ऐसी दुर्त है, ऐसी कठिन है कि उसको पार करना बहुत मुश्किल है। उससे जान छुड़ाना कोई इतना आसान नहीं है, वो सबको पकड़ के रख देती है। तो बोला कैसे फिर उससे जान छुड़ाई दे? वैसे बोला तुम्हारे को माया क्या करेगी, तुम तो ब्रह्मनिष्ठ हो सुखदेव। बोला क्या माया आपके अधीन है क्या महाराज? मायापति तो नहीं है ना आप? तब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल के ऊपर प्रकट थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुखदेव तेरा माया कुछ नहीं करेगी मेरी। हाँ आपकी माया? हाँ, मायाधीक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम। ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये प्रकृति ये दैवी है क्योंकि मेरी है, लेकिन है गुणमयी। गुण कहते हैं तीन गुणों को, और गुण कहते हैं रस्सी को। तीन, एक रस्सी होती है, अकेली डोरी को तो कोई तोड़ देगा, लेकिन तीन डोरियों से रस्सी बनाई जाए ना टूटेगी नहीं खींचने से। तो त्रिगुण माया ऐसी है जो सबको बांध के संसार में बैठी हुई है। दैवी है ऐसे गुणमयी मम माया। किसकी माया? भगवान कहते हैं मेरी माया। ये मेरी माया भगवान कहते हैं तो हमारे लिए रुकावट क्यों रख दिए? आपने देखा है हर देश के अंदर कोई आता है कोई जाता है तो एयरपोर्ट के ऊपर कस्टम का डिपार्टमेंट होता है ना, इमिग्रेशन होती है ना, हर एक की चकास करते हैं ना, मशीन के अंदर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? कि कोई गलत चीज ना लेके आ जाए देश के अंदर, इसीलिए निकालते हैं ना। तो इस दुनिया से जब भगवान के धाम जाने का होता है तो ये माया वहां खड़ी होके अच्छी तरह से एक्सरे करके देखती है कि तुम उस रास्ते में जाने के लायक हो के नहीं है, तो वापस जाओ। इतनी मुश्किल है कि उसको पार करके उस तरफ जाने के लिए अच्छी तरह से चकास करानी पड़ती। तो ये एक माया का काम भगवान ने इसलिए रखा है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी अभी इच्छाएं वासनाएं पूरी नहीं हो वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी नहीं है। तो उन लोगों को
स्क्रीनिंग करने के लिए ये भगवान की माया संसार के अंदर है। दैवी है ये गुण माया मम माया दुर्दया, फिर क्या करें, इसे कैसे बचेंगे? मामे ये प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरंतीते, लेकिन मेरा कोई शरण ले लेना तो ये माया उसका हाथ भी नहीं लगाएगी, उसको बिल्कुल पूछेगी भी नहीं। आपने देखा है कभी कभी ऐसे, ये तो संसारी उदाहरण है लेकिन इसको समझने के लिए हर घर के बाहर जाते हैं तो बाहर लिखा होता है बहुत बड़ा भयानक कुत्ता घर में बांधा हुआ है, घर के दरवाजे के ऊपर अंदर आने से सावधान होना। तो अंदर जाते हैं तो वो तो भोक्ता के सामने देखता है तो अंदर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसी मालिक का बेटा आगे कुत्ते को कान से पकड़ के बोलता है हट जाओ, हट जाता है कि नहीं हट जाता है? उस बच्चे को आने जाने से रोकता है कुत्ता? नहीं रोकता है ना, रखा है चौकीदारी के लिए लेकिन दूसरों की, लेकिन जो उसका अपना बेटा है उसको आने जाने स्कूल जाए वापस आए कोई नहीं रोकता है ना। ऐसे जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं उसके बालक बन जाते हैं उसको आने जाने में वो माया नहीं रोकती है। वो आए तो नारद की तरह इस दुनिया के आए क्या नरक में चले जाए और फिर स्वर्ग में जाए और वैकुंठ चले जाए तो वो माया उनको हाथ जोड़ के कही जाइए। तो है तो माया संसार को बंधन में डाले हुए हैं, लेकिन जो भगवान का शरण लेते हैं माया एतान तरंती ते, इन माया से वो तर जाते हैं। तो कैसे तरेंगे? क्योंकि वो फिर इस माया के अधीन नहीं रहती है, फिर कौन सी माया के अधीन रहती है? महात्मा नस्तु माम पारथ देवी प्रकृति माश्रिता, वो मेरी दैवी प्रकृति की शरण में होती है। तो भगवान की तीन शक्तियां शास्त्र बताता है, एक भगवान की शक्ति बाहर अंग शक्ति है जो माया है जो इस संसार का संचालन चलाती है, एक भगवान की शक्ति अंतर अंग शक्ति है जो भगवान के आनंद के लिए है, उसका नाम है अहलादीनी शक्ति, हलादीनी शक्ति, संवित शक्ति, सच्चित आनंद। भगवान ही तीनों शक्तियां हैं सच्चित और आनंद। हाँ, तो ये अहलादीनी शक्ति आनंद देने वाली शक्ति, ये भगवान की अंतरंग शक्ति है। और तीसरी शक्ति, हम जो जीव हैं संसार में, जीव आत्मा जो है, ये भगवान की तटस्थ शक्ति है, किनारे के ऊपर खड़ी हुई शक्ति है। तटस्थ शक्ति अगर बाहर अंग शक्ति के शरण में जाएगी तो संसार के अंदर थपेड़े खाती रहेगी, और अगर अंतरंग शक्ति के शरण में जाएगी, दैवी प्रकृति का आश्रित ले लेगी तो महात्मा बन के भगवान के चरणों में विराजमान होगी। है बीच में खड़े हुए हम हैं, एक तरफ तो मासी खड़ी है और एक तरफ माँ खड़ी है। मासी के पास जाएंगे तो थोड़ा दूध पिला देगी लेकिन घर में हमेशा रखेगी नहीं, कभी न कभी बोलेगी जाओ अपने घर, लेकिन माँ की गोद में बैठेंगे तो सदा के लिए सुखी रहेंगे। माँ तो भले 50 साल की 80 साल की भी हो जाए ना, अपने बेटे को देखती है तो स्तन के अंदर दूध अपने आप निकल आता है उसका, तो माँ का भाव तो आखिर तक प्रेम का और स्नेह का बना रहता है। तो ये बाहर अंग शक्ति भगवान की है, तो एक ही शक्ति भगवान की, मालिक उसका भगवान ही है, बिजली एक ही है। अच्छा इंजीनियर होगा ना वो तो उससे एसी भी चलाएगा और उसी को घुमा के फिर उसमें से हीटर भी चलाएगा, बिजली वही है। लेकिन इंजीनियर अच्छा है तो एसी भी उसी से चलाता है और हीटर भी उसी से चलाता है। तो ऐसे भगवान है तो एक ही, एक शक्ति उसने इस संसार को चलाने के लिए रखी है, एक शक्ति अपने को और भक्तों को आनंद देने के लिए रखी है। भगवान का आनंद हलादीन शक्ति भगवान को आनंद देती है और भगवान उस शक्ति से अपने भक्तों का पोषण करते हैं। महात्माओं का पोषण भगवान कैसे करते हैं, भक्तों का पोषण कैसे करते हैं, उनका संरक्षण कैसे करते हैं? देवी प्रकृति माश्रिता, वो देवी प्रकृति के आश्रित में। क्यों देवी प्रकृति आश्रित है? भजते अन्यम अनन्य मनसो, वो क्यों है देवी प्रकृति के आश्रित में? क्योंकि भजते अनन्य मनसो, अनन्य मन से, अनन्य का मतलब है न अन्य, और किसी का नहीं, उसका मन कहाँ है? मई आसक्त मन पारथ योगम युन्नम मन आश्रित, मई आसक्त मन, जिसका मन मुझ में आसक्त है। मन आसक्त का मतलब, आसक्त शब्द का मतलब जो आकर्षित हो जाता है जिसका मन मुझ में, तो मई आसक्त मन, ये मन जो संसार में बंधन का कारण है, ये मन अगर भगवान में आसक्त हो जाए और अनन्य मन से अगर भजन भगवान का चलता रहे, श्वास श्वास सिमर गोविंद मन अंदर की उतरे चिंद, तो मन की चिंता दूर करनी है तो श्वास श्वास सिमर, तो इसको कहते हैं अनन्य मनसो, भजताम अनन्य मनसो। भाई क्यों हमेशा के लिए उसका भजन करेंगे और किसी का नहीं करें? एक भगवान का भजन क्यों करें? इसलिए करें ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम, क्योंकि वो जानते हैं, ये महात्मा जानते हैं। कैसे जानते हैं? ज्ञानवान माम प्रवज्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो बहुत बड़े ज्ञान अर्जन करने के बाद इस नतीजे के ऊपर पहुंचता है, इस निर्णय के ऊपर पहुंचता है, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान वासुदेव है, सब महात्मा। ऐसा महात्मा जो होता है वो ज्ञात्वा, वो जानता है, क्या जानता है? भूत आदिम, जो ये संसार है इससे आदि में भगवान थे। और कैसा भगवान है? अव्ययम, जिसका व्यय नहीं होता है, अविनाशी है, सदा रहने वाला है। जब कोई चीज सदा रहने वाली है, हमेशा हमारा संग नहीं छोड़ेगी, अरे उसका संग हम करना पसंद करेंगे ना। जो चीज एक दिन है दूसरे दिन नहीं है, उससे प्रेम कैसा होगा? हम कहते हैं भगवत गीता की शिक्षा ऐसी है कि आपके अंदर जितनी सलाहियत है, जितनी शक्ति है, जितनी आपके अंदर क्षमता है, जितना आपके अंदर टैलेंट है, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, उस सारे को बाहर निकाल के आपको बहुत ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ करने के लिए, कर्तव्यनिष्ठ आदमी कम होता है, आदमी में काम करने की क्षमता कम बढ़ती है, जब उसको दो बातें मालूम हो। एक ये मालूम हो कि मैं सदा के लिए हूँ, मेरा परमानेंट पोस्ट है, और दूसरा उसके मन में ये भाव आ जाए कि मेरी बैकिंग बहुत अच्छी है, मेरे पीछे बहुत सहारा मेरा बड़ा है। आप देखिए इस दुनिया के अंदर परमानेंट नौकरी होगी तो आदमी परमानेंट काम होगा, अपना दुकान होगा, अपना मकान होगा तो सजाएगा, अच्छी तरह से उसको बढ़ाएगा, काम करेगा। बाहर का होगा तो उसमें दिल लगा के काम नहीं कर सकता है। और आपकी बैकिंग अगर अच्छी है, आपका रिश्ता प्राइम मिनिस्टर आपके साथ पार्टनर है बिजनेस में, तो आपको किसी की परवाह रहेगी क्या? आपकी बैकिंग अच्छी हो और आपको ये पता हो कि मेरा काम ये स्थाई है और अस्थाई नहीं है, तो आप पूरी शक्ति लगा के उस काम को करेंगे। और भगवत गीता ये शिक्षा देती है, अरे भाई तू स्थाई है, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, तू मरने वाला नहीं है, तू सदा रहेगा, और तेरी बैकिंग क्या? मम ही वंश जीवलोके जीव भूत सनातन। अरे तू भगवान कहते तू मेरा वंश है, माता हम अस जगत तो माता था, मैं माता पिता हूँ, तेरा पालन पोषण मैं करता हूँ। जब ये मालूम हो जाए कि भगवान हमारी पीठ के ऊपर हाथ रख के खड़े हुए हैं और हम कभी मरने वाले नहीं है, तो संसार के अंदर अर्जुन की तरह आंखें बंद करके तीर चलाएंगे ना, कहीं काम करना है तो अपना काम निष्ठ रहेंगे ना। यही तो बहुत बड़ा सुंदर महावाक्य है भगवत गीता का, तस्मात सर्वेषु कालेषु मान माम अनुसमर युद्ध्य च, इसलिए हर समय मेरा ध्यान करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करता रहे। युद्ध का अर्थ अर्जुन के लिए युद्ध करना है, हमारे लिए अपना कर्तव्य कर्म करना है। तस्मात सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु, सब समय हर समय भगवान का चिंतन चलता है, इसको कहते हैं अनन्य मनसो भजते अनन्य मनसो। अनन्य मन से वो मेरा भजन करते, तो ऐसे लोग कौन होते? कीर्तय सततं कीर्तयन्तो माम, ऐसे लोग सततं सदा के लिए कीर्तयन्तो माम मेरा कीर्तन करते। भगवान की कीर्ति गाने वाले महात्मा किसको कहते हैं? जो महान की कीर्ति गाता है वो महात्मा होता है। भगवान महान है, उसकी कीर्ति गाते हैं, उसके गुण गाते हैं और उसका कथा करते हैं, उसकी कीर्तन करते हैं, इसलिए वो महान है। सततम कीर्तनयन्तो माम यततंश्च दृढवृता, फिर भी यतन करते हैं, यतन करते हैं इस संसार में जब तक है, हमको यतन नहीं छोड़ना है। प्रयत्नाद यतमानस्ते, दो दो बार ये बात भगवान ने कहा, प्रयत्न करो आगे बढ़ने का, यतन करो कहीं गिर ना जाओ। यतमानस्ते यततंश्च, यतन करना चाहिए। ये संसार बहुत बहुत ऐसा लुभावना है, ऐसा आकर्षण करने वाला है। एक बार किसी ने कहा कि भगवान कैसे मिलेगा, बोला भगवान आपको मिलना है तो जैसे यहाँ कह लिया ना कि भंडारा एक बजे आना, सबके लिए भंडारा है, ऐसे बोला एक बजे भगवान यहाँ विराजमान रहेंगे, आओ जिसको मिलना है मिलना। ये तो बहुत आसान काम है, भगवान आज यहाँ मिलेंगे, भंडारे के बाद सबसे भगवान मिलेंगे। चल चल भगवान का दर्शन करने में कौन सी आपत्ति, आज तो भगवान विराजे हैं यहाँ। लेकिन बाहर लोग जब भगवान को देखने के लिए आने लगे ना, तो पहले पहले बाहर एक सुंदर बाजार लगा दिया था और बाजार में लिखा था आइए देखिए और जो चाहिए वो ले जाइए, कोई पैसा आपसे नहीं मांगेगा। लोगों ने बोला ये तो भगवान अभी दो घंटे पड़े हैं पहुंचने में, ये सामान देखो कितना सुंदर है, वो देखो कितना अच्छा लगा है, तो इलेक्ट्रॉनिक का बाजार लगा हुआ है और ये कपड़े का बाजार है और ये कॉस्मेटिक का बाजार है और मुफ्त का माल है, इतना लादा के उठाने के लिए थैला लेने की जरूरत पड़ गई। बोला आप ठीक है इसको यहाँ अब रख के जाओ, यहाँ सुरक्षित है, वापसी में ले लेना। आगे जाके देखते हैं तो बहुत सुंदर छप्पन भोग का बहुत सुंदर वातावरण बना हुआ है, आइए 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 भोजन कीजिए, आपके लिए भंडारे और प्रसाद की व्यवस्था है, खाइए जल्दी खाइए, ताजा है, और फिर आप देखा कभी बांके बल्ह बिहारी मंदिर दर्शन करते जाते हैं गली से, जब आप वहाँ से गुजरेंगे ना तब वो जो बनाता है ना बल्ले, वो बल्ले बनाने वाला घी को ऐसे करके थोड़ा तड़का देगा, चुछ 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 होगा, वो आव नाक में आती है, भगवान की तरफ जाने से पहले वो बल्ला खाने का मन करता है। और कई लोगों को हमने देखा है वो भगवान के पास अभी थोड़ा देर है दर्शन में, चलो बल्ला खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा एक हो जाए, भले हल्ला हो जाए लेकिन बल्ला तो खाना ही है, क्योंकि इतना वो माहौल ऐसा बना देते हैं कि मंदिर के दर्शन से पहले। तो ऐसे वो माल जो देखा इतना खाया और मुफ्त का माल, मुफ्त में खा खा, पेट अपना होता है लेकिन आदमी उस वक्त पेट भी मुफ्त का समझ देते हैं और वो ऐसा खाते हैं। फिर तो वो एक मथुरा में पंडित जी हुआ करते थे चतुर्वेदी जी, उसके घर में नव विवाहित बहू आई, तो ऐसे श्राद्ध था कोई भोजन का, कह के गया पंडित जी को, तो घर में सास कहने लगी बहू तुम खटिया बाहर बिछा के रखना, पंडित जी वापस आएंगे ना जब भोजन करके तो आके पड़ रहेंगे, फिर चल नहीं पाएंगे, गिर पड़ेंगे, रोने लगे कि मेरा क्या भाग फूटा, मैं इस घर में आई हूँ, मेरा मैं तो रो क्यों रही है, भाग क्या फूटा। अरे बोला मेरा पिताजी भोजन करके खटिया साथ ले जाता था, उधर ही सोता था, वो वहाँ से चल के यहाँ आके खटिया पे सोएगा, एक ऐसे घर में मैं आ गई। तो भोजन जब आदमी पराया खाते हैं तो खटिया साथ ले जाता है, तो वो जो खाया उधर तो सबको, अरे नहीं अब तो टाइम बाकी 15 मिनट बचे हैं, चलो 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 भगवान का दर्शन, भगवान बैठे हुए आगे आए तो बहुत सुंदर नृत्य चल रहा था और गान चल रहा था, आइए बैठिए सुंदर सुनिए, खाया है तो थक गए, चलो 2 मिनट आनंद से सुन लेते हैं। वो जो धुन में सुनने लगे तो कुछ सो गए और कुछ थोड़े जागे, आगे देखा तो दरवाज़ा खुला था लेकिन संतरी खड़े थे। बोला आपको कितने बजे आने को बोला था, बोला 2 बजे बोला था, टाइम क्या हुआ है, बोला 4:45, तो अंदर मिलने का टाइम बंद हो गया। तो भगवान तो बैठे हैं मिलने के लिए तैयार हैं लेकिन हम पहले तो दुनिया के बाजार में फंस जाते हैं और फिर खाने के लिए इस जबान को चश्के में फंसा देते हैं और फिर कान को सुनाने में लटका देते हैं, तब तक वो टाइम टल जाता है जिस टाइम पे भगवान से मिलने का मौका। भगवान ने 2 टाइम खुली कचहरी रखी हुई है, सुबह प्रातः काल संध्या में सब भगवान से मिले, भगवान आके हाथ मिलाते हैं, बैठिए हमसे बात कीजिए, और संध्या के सायंकाल को भगवान ने खुला टाइम रखा है, आइए आइए मुझसे मिलिए, इसलिए संध्या के समय को बोलते हैं भगवान से भी संध्या मिला लो, अपना हाथ मिला लो, तेरी जो दूरी है उसको खत्म करो। और इन 2 समय पे हमारे पास टाइम नहीं है, सुबह के समय पे हम उठ नहीं पाते हैं और सायंकाल समय में हम दुकान से आ नहीं पाते हैं, जो भगवान से मुफ्त में मिलने का टाइम है उस टाइम पे तो हम प्रयास कर नहीं पाते, बाकी टाइम में तो अपॉइंटमेंट से टाइम मिलता है, तो राजा महाराजा की अपॉइंटमेंट मुश्किल है तो भगवान से मिलना इतना आसान थोड़ी, जब मुफ्त उसने टाइम रखा है तब हमको टाइम नहीं है, तो यतन करना चाहिए, जब टाइम भगवान से रखा है तो दुनिया से टाइम को उस वक्त नहीं करो। अभी आपका किसी बहुत बड़े व्यक्ति से टाइम रखा हो आपके घर में, अगर प्रधानमंत्री आने वाला हो तो आप अपने बच्चों को बीवी को कहेंगे चुप रह जाइए 1 घंटा पहले हमसे बात मत करना, अब हम शांति रहेंगे क्योंकि हमारे घर में बड़ा मेहमान आने वाला है। अरे जगन्नाथ भगवान, जगत के नाथ से 2 मिनट भगवान का भजन करने बैठते हो तब सबको शांत नहीं करा सकते हो, तो भगवान मन को नहीं कह सकते थोड़ी देर चुप हो जाओ, सारा दिन तुम्हारा काम सुनता रहता हूं, अब थोड़ी देर के लिए भगवान से बात करने का टाइम, अब तो मेरे को छुट्टी दे, तेरी बहुत नौकरी कर ली, अब भगवान से थोड़ी उसकी सेवा में लगना है, थोड़ा तो शांति से बैठ जा। अरे बच्चे को समझाया जा सकता है, ऐसे उसको समझाने का प्रयास करो, यततन से यत करो और दृढ़ व्रत धारण करो। ये महात्मा दृढ़ व्रत धारण करते हैं, ऐसे नहीं कि ओ कभी कभार जब मेला होगा तब जाएंगे भगवान का नाम लेंगे, नहीं नहीं रोज लेना है, नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त किसको कहते हैं पता है, युक्त कहते हैं जो जुड़ा हुआ हो, जिसका हाथ हाथ मिला हो उसको कहते हैं युक्त। आपने देखा है संसार में जो विवाह होता है ना, विवाह संस्कार का एक दूसरा नाम है पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी कहते हैं हाथ को, ग्रहण मतलब पकड़ लेना, जब कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है ना, पंडित जी देता है, उस दिन से ये दृढ़ वचन कर लेता है कि आज के बाद इसका पालन पोषण भरण पोषण करेगा, पति करेगा, ये जवाबदारी लेता है। ऐसे गुरुजन जब शिष्य का हाथ पकड़ के भगवान के हाथ चरणों में ऐसे रख देते हैं कि अब ये पानी, ये इसका हाथ आपके चरणों में, तब से भगवान उसकी सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता है। लेकिन ऐसा दृढ़ व्रत तो करना पड़ेगा ना। स्त्री एक बार व्रत करती है ना कि अब मैंने पति कर लिया, मेरा जीवन इसके साथ ही बीतना है, ये एक दफा दृढ़ व्रत लेना पड़ता है। तो दृढ़ व्रत, एक का दृढ़ व्रत लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान एक की सेवा में लगने का जब दृढ़ व्रत ले देते हैं, यततंश्च दृढ़ व्रताः, जो यतन करते हैं, दृढ़ व्रत लेते हैं, नित्य युक्ता उपासते, क्या व्रत क्या लेते हैं, कैसा व्रत लेते हैं, बोला नित्य युक्ता उपासते। उपासते मतलब उप का ऊपर आसन लगा के भगवान के पास बैठ के बैठेंगे, आसन लगाएंगे भगवान के पास। कब बैठेंगे? नित्य, रोज बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? युक्त होकर बैठेंगे, जुड़ के बैठेंगे, इधर उधर मुड़ के नहीं देखेंगे, केवल तुम्हारे को ही निहारते रहेंगे, तुम्हारे सामने बैठ के प्रार्थना करते रहेंगे। ऐसे भाव से जो अपना जीवन की शैली बना लेता है, नित्य युक्त उपासना होता है, दृढ़ व्रत होता है, यत्न करने वाला होता है, नित्य कीर्तन करने वाला होता है, उसको महात्मा कहते हैं। तो महात्माओं के संग में बैठने से महात्मा बनने की अभिलाषा करो। ये जीवन मिला है आपको महात्मा बनने के लिए, ये मानव जन्म से ऊपर उठ के महात्मा बनना है, तो ये बहुत सरल मार्ग भगवान का, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि क्या संसार में करना है, बहुत सरल साधन बता दिया है। क्या सरल साधन बताया? यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, सब यज्ञों में मैं जप नाम का यज्ञ हूँ। तो भगवान के नाम का जप तो नित्य करने का नियम डालिए, भगवान का नाम रोज जपिए, अकेले घर में और परिवार के सब इकट्ठे होके भगवान के नाम का कीर्तन 5 मिनट रोज कीजिए। ये दो काम रोज आप नित्य करके देखिए, इसका दृढ़ व्रत धारण कर लीजिए, ये कहीं चूक न जाए, इस बात का यत्न कीजिए, तो आपका घर वैकुंठ बन जाएगा, जहाँ कोई कुंठ नहीं रहेगा, जहाँ कोई दुख तकलीफ ताप संताप नहीं रहेगा, जहाँ कृष्ण है सूर्य समान, जहाँ सूर्य तहाँ नहीं अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ माया नहीं अधिकार। भगवान जहाँ है वहाँ माया को अधिकार नहीं है, और जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार को अधिकार नहीं है। ऐसे भगवान का नाम का जप और कीर्तन अपने घर में नित्य करने का नियम बना लेंगे, तो भगवान नित्य आपके घर में निवास करेगा। जब नारायण निवास करेगा तो लक्ष्मी अपने आप उसका चरण दबाती रहेगी। हम लक्ष्मी को पकड़ते हैं और नारायण को भूल जाते हैं, ये तो काम रावण ने किया था, जो सीता को उठा के लाया था और राम जी को छोड़ के वन में आ गया था, ये असुरी प्रवृत्ति है। नारायण को पकड़ लेंगे तो लक्ष्मी अपने आप उनके चरणों में आके बैठ जाती है। तो ये बहुत सरल, तो अंतरंग शक्ति भगवान की जो है उसका संबोधन ब्रह्मा जी ने इस कलि संत ने उपनिषद में हरे शब्द से किया है। हरे भगवान की अंतरंग शक्ति को संबोधन है, और कृष्ण और राम भगवान के नाम है परम आनंद। राम मतलब आनंद प्रदान करने वाला, आनंद घन, कृष्ण मतलब आकर्षण करने वाला, जो सबको दोनों बाहें फैलाए हुए वो बांसुरी बजाता हुआ बुला रहा है, आइए आइए, आकर्षण करता है। और राम के आएंगे तो आनंद के समुद्र में अपना जीवन सफल कर लेंगे, और उन दोनों तक पहुंचने के लिए भगवान की अंतरंग शक्ति हरे को प्रार्थना है। 3 शब्दों को ऐसे बोलना है जैसे बच्चा बिलख के अपनी माँ के लिए रोता है। जब बच्चा माँ के लिए रोता है तो माँ सब काम छोड़ के उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है, अपना अमृत पिलाती है। ऐसे जब इस कीर्तन में हमारा बच्चे बालक का भाव हो, और तब ये माता अंतरंग शक्ति भगवान की श्री राधे स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, सीता स्वरूपा अपने उस बालक को उठा के भगवान के चरणों में चरणा अमृत पिलाती है, तब वो आनंद का सच्चा अनुभव कर सकता है। इन शब्दों के साथ हम अपनी कथा को यहाँ विराम देते हैं। फिर भी इस सारी संस्था को प्रणाम, संस्था का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने सेवा का हमको अवसर दिया, और संतजनों का और पूज्यपाद श्री सद्यवानंद जी महाराज जी की कृपा के फिर भी कांक्षी रहेंगे कि उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके ये अवसर दिया कि हम उनकी सेवा कर पाएँ। और इन शब्दों के साथ सबका धन्यवाद करते हैं, और ये कीर्तन जो हम कह रहे हैं आप करेंगे तो आपका भगवान श्री कृष्ण का बताया हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ गौलोक में गाया जाने वाला है, अपने घर को गौलोक बनाना है तो कीर्तन कीजिए। ये हमारे भक्त 5 मिनट कीर्तन करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
बहुत बहुत धन्यवाद है माता जी का। और प्रार्थना है हमारे आदिवासी हरिदास महाराज, बहुत सुंदर धुने